लोकतांत्रिक मूल्यों के पैमाने पर हिंदी कहानी। किसी ने सच कहा है कि साहित्य और समाज में होने वाले परिवर्तन की सबसे सटीक पहचान स्त्री पुरुष संबंध में आने वाले बदलाव के माध्यम से की जा सकती है। 20वीं सदी का आरंभ यूं तो दुनिया की बंदरबांट के लिए आयोजित विश्व युद्ध के साथ हुआ, लेकिन जल्द ही यह दुनिया स्वतंत्रता, समानता और न्याय के लिए जूझ रही ताकतों का मंच बन गई। हमारा देश भी इस दौरान देशभक्ति और आत्मोत्सर्ग की भावना से उत्तरोत्तर ओतप्रोत रहा। उसने कहा था और गुंडा इसी मनोवृत्ति की प्रतिनिधि कहानियां हैं। खास बात यह है कि इन दोनों कहानियों में क्रमशः जर्मनों और अंग्रेजों से देश की रक्षा के लिए जारी संघर्ष में अपनी आहुति देने के कारण स्त्री के प्रति पुरुष का प्रेम है। विपरीत परिस्थिति के चलते मिलन नहीं हो सका, लेकिन बिलगांव से भी वह आंच मध्यम न पड़ी। लहना सिंह और ननकू सिंह की सुबेदारी दारनी और पन्ना के प्रति वचनबद्धता देश और मानवता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का विकल्प नहीं, उसका पर्याय बनती हैं। उच्चतर मानवीय मूल्यों की एकता जीवन में चाहे जितनी अनूठी जान पड़ती हो, कला के दायरे में यह एक सीधी साधी सच्चाई है। हमारी आजादी की लड़ाई के दौरान 30 का दशक कई स्तरों पर निर्णायक मोड़ का समय है। क्रांतिकारी आंदोलन के दमन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता और दुनिया के पैमाने पर जारी फासीवादी उभार ने इस दौर के साहित्य को आत्मावलोकन और रूपांतरण के लिए प्रेरित किया। कविता के क्षेत्र में छायावादी वायवीयता और रोमान के आग्रह ने मानव समाज की प्रगति के पक्षधर ठोस मूल्यों के लिए जगह खाली कर दी। इस युगांतर का श्रेय हिंदी में प्रमुख रूप से प्रेमचंद को है। 1936 का वर्ष इस दृश्य से विशेष उल्लेखनीय है। इसी वर्ष गोदान, कफन और साहित्य का उद्देश्य का प्रकाशन हुआ। प्रेमचंद और जैनेन्द्र को एक दूसरे की विपरीत परंपराओं का वाहक बताने वालों की हिंदी में कमी नहीं है। लगभग पैतृक विरासत की तर्ज पर ये लोग हर बड़े लेखक के नाम से एक समस्या निकालने को तत्पर रहते हैं। समय समय पर इन परंपराओं में परस्पर टकराव, अवमूल्यन और अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चलती रहती है। इस दौरान साहित्य की अपनी परंपरा कहीं पीछे छूट जाती है। परंपरा के साथ ऐसा मनमाना व्यवहार करने वाले भूल जाते हैं कि खुद साहित्य की अपनी परंपरा होती है, जिसमें मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर मूल्यों का पोषण होता है। इन मूल्यों का विरोध करने वाली प्रवृत्तियां भी साहित्य में सक्रिय होती हैं, जो सामाजिक यथास्थिति को बनाए रखने के लिए प्रभुत्वशाली वर्ग के मान मूल्यों का समर्थन करती हैं। व्यापक रूप से साहित्य में यही दो परंपराएं सक्रिय होती हैं। इनके परस्पर संघर्ष से साहित्य का विकास होता है, बाकी सारा अंतर सिर्फ शैली का होता है। रचना के अभिप्राय को न पकड़ पाने पर विभिन्न शैलियों और विषयों को ही पहचान पाते हैं और उनके आधार पर परंपराओं का निर्माण करने लगते हैं। इस प्रसंग में एक विशेष बात यह भी है कि सच्ची रचना का अभिप्राय कई बार रचनाकार से अलग, यहाँ तक कि उसके विरुद्ध भी हो सकता है। इस वजह से भी उसके अभिप्राय को ग्रहण करने में बाधा आती है। रचना में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों जोर आजमाइश को स्वतंत्र होते हैं। कोई रचना उतनी ही प्रभावशाली होती है जितना उसका प्रतिपक्ष, रचनाकार जिस प्रवृत्ति को सही नहीं मानता और जिनका निषेध करना चाहता है, मजबूत होता है। अगर किसी रचना में चित्रित नकारात्मक प्रवृत्तियों को धारण करने वाले पात्र कमजोर और हास्यास्पद हैं, तो वह रचना उठ ही नहीं सकती। रचनाकार का अपना पक्ष भी अपने सशक्त प्रतिद्वंदी से जूझ कर ही वास्तविक ऊंचाई हासिल करता है, तभी वह प्रतिपक्ष का सकारात्मक निषेध कर सकता है। आधुनिक कला की दुनिया का वह सार्वभौम नियम है। रचना का दूसरा लेकिन अधिक महत्वपूर्ण मानदंड है स्त्री के प्रति उसमें व्यक्त हुआ नजरिया। लैंगिक विषमता का इतिहास सभ्यता की समूची यात्रा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कसौटी पर आधुनिक काल के हिंदी साहित्य को आसानी से कसा जा सकता है। स्त्री को हीन और हेय समझने वाली कोई रचना न तो लोकतांत्रिक हो सकती है न मानवीय। हाँ, रचना के सत्य को ग्रहण करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। रचनाकार की इच्छा और रचना की वस्तुगत भूमिका को अलग अलग समझना अनिवार्य है। इसे रचना की विचारधारा और उसकी संवेदना के बीच के अंतराल के रूप में देख सकते हैं। बहरहाल हम अपने मूल बिंदु पर लौटें तो प्रेमचंद और जैनेन्द्र के बीच जो अंतर है वह यथार्थ को चित्रित करने के तरीके का है। प्रेमचंद के यहाँ मनुष्य का अंतर जगत अपने सामाजिक परिवेश के बीच शरीर में आत्मा की तरह मौजूद होता है, जबकि जैनेन्द्र के यहाँ आत्मा का ही एक्सरे होता है। कहा जा सकता है कि वे आत्मा के शिल्पी अथवा गुप्तचर हैं, लेकिन इस आधार पर उन्हें अलग अलग खानों में बांटना हास्यास्पद होगा। सच तो यह है कि अंतर जगत की गांठें भी बाह्य जगत जीवन की ही देन होती हैं। कभी हम प्रत्यक्ष जीवन से उनका संबंध जोड़ लेते हैं, कभी नहीं जोड़ पाते। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की दो लगभग अंतिम रचनाएं गोदान और कफन को लेते हैं। गोदान का होरी जिस धर्म मर्याद से पीड़ित है वह उसके समाज का एक मूल्य है जो उसकी आंतरिक व्यवस्था बन गया है। विचार और व्यवहार की एकता का कोई विकल्प उसके पास नहीं है, इसलिए उसने अपने पाखंडी समाज में वह अकेला पड़ जाता है। इसी स्थितजन्य व्यवस्था के चलते धनिया जैसी तेजस्विनी स्त्री को प्रतीकात्मक गोदान करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। होरी और धनिया अपने समाज की जकटबंदी को नहीं तोड़ पाते। प्रेमचंद का रचनाकार इसे स्वीकार नहीं करता। वे उस समाज से प्रतिशोध लेने के लिए घीसु माधव जैसे चरित्रों की रचना करते हैं। गोदान की कौन कहे, वे दोनों कफन तक की परवाह नहीं करते। पुरोहिती कर्म कांडों के प्रति इस तरह वे अपनी घृणा व्यक्त करते हैं। ध्यान दें कि ऊपरी तौर पर होरी धनिया और घीसु माधव में कोई साम्य नहीं है, लेकिन आंतरिक रूप से वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पूस की रात का हल्कू भी इसी तस्वीर का एक और रुख है। कफन पर विचार करते समय कुछ विचारकों ने बुधिया के प्रति जताई गई संवेदनहीनता के निहितार्थों की चर्चा की है। वास्तव में यह हमारे समाज में स्त्री की स्थिति से जुड़ी हुई त्रासदी है। इस कहानी में प्रेमचंद ने बुधिया के दर्दनाक अंत को तेज गति से चित्रित किया है, पर हमारे समाज में स्त्री को धीमी और खामोश मौत की तरफ बढ़ते हुए हमेशा देखा जा सकता है। चाहे वह पत्नी की सुनंदा हो, रोज की मालती हो, या करवा का व्रत यशपाल की लाजो हो। होली नहीं खेलता कि ज्योत्सना अधिक स्वतंत्र चेतना और निर्णयात्मक ठहरती है। जब उसके एक स्वाधीनता मूलक वक्तव्य को उसका प्रेमी बैजल उसकी पराधीनता का सूचक मानकर उसे उसके पद की संपत्ति के बतौर देखने लगता है, वह पद की इच्छा के विरुद्ध जाकर भी उससे संबंध तोड़ लेती है। बैजल की चेतना का पिछड़ापन उसके आड़े आ जाता है और अंगूर खट्टे हैं वाले अंदाज में उसे होली न खेलने की घोषणा करनी पड़ती है। और फिर भी पत्नी का पुरुष इस मामले में विशिष्ट है कि वह अपने समय के उन्नत राजनीतिक विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। राजनीतिक रूप से उन्नत और सामाजिक रूप से पिछड़ा होना हमारे स्वाधीनता आंदोलन की दूरगामी अर्थ रखने वाली सच्चाई है। कालिंदी चरण क्रांतिकारी आंदोलन पर तनिक उदार गांधीवादी नजरिए से विचार करता है। संभवतः यह नजरिया स्वयं जैनेन्द्र का भी है। उन्होंने कहानी में कालिंदी चरण को प्रतिपक्ष के रूप में चित्रित किया है जिसका उन्हें निषेध करना है, लेकिन इसका चित्रण उन्होंने अपनी आत्मा के एक अंश से किया है। वह पात्र अपनी शक्ति और सीमा दोनों के साथ उपस्थित होता है। इससे पाठक को अपने भी अंदर मौजूद कालिंदी चरण का पता चलता है। वह उस बुराई के प्रति सचेत होता है, ऐसा न होने पर रोज अथवा करवा का व्रत के पत्नियों से सामना होता है जो सर्जरी के अभ्यास के लिए मरीज की टांग काट देने या अधिकार जताने के लिए पत्नी को थप्पड़ रसीद करने में गुरेज नहीं करते। हम इनकी आलोचना तो करते हैं, लेकिन आत्म समीक्षा को प्रेरित नहीं होते। वह बुराई हमारे अंदर फलती फूलती रहती है और हम दूसरों की कमियों को अपना निशाना बनाते रह जाते हैं। पति के लिए पत्नी द्वारा किए जाने वाले त्याग की परंपरा समाज और साहित्य दोनों में अक्षुण्ण रही है। यह हमारे सामंती पितृसत्तात्मक समाज को संचालित करने वाली अनेक जड़ताओं में से एक है। दूसरे शब्दों में यह एक सामंती आदर्श है जिसको समानता और स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक आदर्श से चुनौती मिलती है। गोदान में सामंती आदर्श के निर्वाह को देखकर मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, जबकि कफन में इन बंधनों को एक झटके में तोड़ फेंकने का लोकतांत्रिक आदर्श प्रस्तुत है। पहली प्रवृत्ति को आलोचनात्मक यथार्थवाद और दूसरी को वैकल्पिक आदर्शवाद कह सकते हैं। फिलहाल सामंती आदर्श हमारे समाज को संचालित कर रहे हैं, इसलिए उनका आलोचनात्मक चित्रण ही कहानियों में अधिक होता है। कफन जैसी रचनाएं यूटोपिया रचती हैं, इसलिए विरल होने पर भी हमें गहरे तक हांट करती हैं। नन्हो और कोशिका घटवार में यह पहलू तनिक बदले हुए कोण से उभरता है। यहाँ समाज की पिछड़ी हुई मान्यताओं की वेदी पर व्यक्तिगत भावनाओं की कुर्बानी दी जाती है। दोनों कहानियों में एक दूसरे को दिलो जान से चाहने वाले प्रेमी युगल हैं। बीच में कोई वास्तविक बाधा भी नहीं है, लेकिन वे एक दूसरे से दिल की बात नहीं कह पाते। अपनी भावनाओं को लेकर वे अकारण शर्मिंदा होते हैं। अपने अंतर निषेधों के सामने समर्पण करते हुए वे अलग होने को बाध्य हो जाते हैं। दोनों सोचते रहते हैं कि पहल दूसरा करे, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, कि मन स्थित उन्हें सामंती मूल्यों के असहाय शिकार में बदल देती है। सहानुभूत के नहीं, वे दया के पात्र बनकर रह जाते हैं। परिंदे में ह्यूबर्ट लतिका के सामने प्रेम का प्रस्ताव रखता है, रखता तो है, पर यह जानकर कि वह पहले से भी किसी को प्रेम कर चुकी है, अपने प्रस्ताव पर लज्जित होने लगता है। इधर लतिका, जो अपने प्रेमी के असामयिक निधन के कारण दुखी और एकाकी जीवन बिताती है, उसके प्रस्ताव को विचारणीय भी नहीं मानती। ह्यूबर्ट के सीने में होते दर्द को लेकर मन ही मन वह आशंकित होती है। भाव यह उभरता है कि उसे प्रेम करने वाला अकाल मृत्यु के लिए अभिशप्त है। हमारे समाज में ऐसे अंधविश्वास भारी मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन इस आधुनिक परिवेश में उनकी मजबूत पकड़ देखकर आश्चर्य होता है। हमारी आधुनिकता ऐसी ही है, बहुत कुछ बाहरी तामझाम पर निर्भर। यह कहानी हमें इस प्रकार आत्मावलोकन के लिए प्रेरित करती है। तीसरी कसम की रसिक मार्मिकता की तरह तह में जाएं तो पता चलता है कि हीरामन की शादी उसकी भाभी ने हो जाने दी होती तो शायद तीसरी कसम की नौबत ही आती। भाई भाई के प्रेम को गौरवान्वित करने के साथ साथ जीवन व्यवहार में भाई का हिस्सा हड़पने की प्रवृत्ति हमेशा हमारे लोकमन में बद्धमूल रही है। हीरामन की निश्चलता के चलते उसे भाई भाभी का यह व्यवहार नहीं खटकता और उनकी सेवा में जुटा वह एक के बाद दूसरी कसम खाता रहता है। रेणु ने इस विडंबना का संकेत तो किया, लेकिन मन उनका भी लोक जीवन के सरस पक्षों में रमने वाला था, इसलिए यह पहलू कहानी में उभर नहीं सका। कुल मिलाकर सच्चाई, शालीनता और सादगी जैसे गुण यहाँ भी मनुष्य को अन्याय का विरोध करने से रोक देते हैं और उसे परिस्थिति का शिकार बनने की ओर ले जाते हैं। यही सच है कि नायिका दीपा दो पुरुषों के बीच झूलती रहती है। वह जिसे छोड़ आई है पहला मौका मिलते ही उसे वापस पाना चाहती है, और जिसे पा चुकी है उसे छोड़ने छोड़ने को हो आती है। स्त्री की पेंडुलम जैसी नियत को ही सच कहना सामाजिक यथार्थ के प्रति अनालोचनात्मक प्रतिबद्धता के चलते ही संभव है। नई कहानी के दौर में स्त्री पुरुष संबंध से अलग अन्य विषयों पर जो कहानियां लिखी गईं, उनमें भी स्वार्थपरता के माहौल में जी सकने के लिए जूझते हुए मासूम और निरीह लोग दिखाई पड़ते हैं। जिंदगी और जोंक में के रजुआ के साथ मोहल्ले वालों का बर्ताव हो या चीफ की दावत के शामनाथ का अपनी माँ से लगाव, हर जगह यह धूसर यथार्थ प्रकट हुआ है। भोला राम का जीव का भोला राम तो भ्रष्टाचार से जूझते जूझते भगवान को प्यारा हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा पेंशन की फाइल में ही अटकी रह जाती है। कहने को इन कहानियों को मानवीय जीविषा की कहानियां भी कह सकते हैं, लेकिन असल में ये मनुष्य के अपनी गरिमा से वंचित हो जाने और उसे वापस पाने की उम्मीद तक के बगैर लगभग बदहवासी में जीते लोगों की कहानियां हैं। ये कहानियां कफन की ही परंपरा में हैं, हालांकि इनमें घीसू माधव के जीवट का अभाव है। 60 और 70 के दशक में सामने आई साठोत्तरी कहानी में सामाजिक यथार्थ का निष्क्रिय आलोचना के बजाय मोहभंग और विद्रोह का स्वर सक्रिय हुआ, लेकिन कोई तर्क संगत राह न पाकर अराजकता की गर्त में गिर गया। इस दौर की कहानियों का प्रतिनिधित्व तो घंटा करती है। पेट्रोला और कुछ नहीं घीसू माधव के ही रहने की जगह है। आजादी के बाद विकसित दलाल तंत्र ने कर्म के प्रति उनकी उदासीनता में छिपे परिवर्तनकामी सत्व का अपहरण करके उन्हें भेड़िया धसान में शामिल मलूक दास के शिष्यों में बदल दिया है। कुछ इस वजह से भी बैठकबाजों की उनकी कुत्सित मंडली को अब ऐसी नीच नजर से नहीं देखा जाता। घंटा का मुख्य पात्र रेस्तरा की जिंदगी को लात मारकर अंततः पेट्रोला में लौट आता है। वास्तव में यह कोई सकारात्मक अंत नहीं है। रेस्तरा की जिंदगी कम से कम प्रतिक्रिया तो पैदा करती है, उसमें सक्रियता की गति की संभावना है। पेट्रोला की जड़ता का आत्ममोह से जैसा नाता है उसमें उन्मेष की कोई संभावना नहीं दिखती। इस तरह कफन की निष्क्रियता सकारात्मकता है, जबकि घंटा का विद्रोह प्रतिगामी। नेहरूवीय स्वप्न के शेष होने के साथ हमारा मध्यवर्गीय युवा वर्ग अराजकता और जड़ता के बीच बहुत हद तक ऐसी ही स्थिति में फंसा रहता था। साठोत्तरी दौर के कहानीकारों के परवर्ती दौर की कहानियों धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और कविता की नई तारीख से यह बात अधिक स्पष्ट होती है। धर्म क्षेत्र की जंजीर से बंधी हुई स्त्री अपने अपहर्ताओं में से एक की मर्दानगी को चुनौती देकर अंततः उसे उसके बाप से लड़ाने में सफल हो जाती है। इस तरह उसके नवजात शिशु की रक्षा होती है और जंजीर से छूटकर वह असार संसार में खुशी के आंसुओं के साथ प्रवेश करती है। धार्मिक अखाड़ों वगैरह के प्रासंगिक चित्रण के बावजूद यह कहानी स्त्री की पराधीनता का मिथक रचती है और यथार्थ के कहीं बहुत पीछे छूट गए पहलू को व्यक्त करती है। कविता की नई तारीख के लेखक की पत्नी उनके नायकोचित व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए गर्व से बताती है कि शादी की पहली रात को ही उसने जो तमाचा मारा था उसका निशान अब भी पत्नी के चेहरे पर है। आत्ममुक्त पति जब भावुक होता है तो उस निशान को चूमने की इच्छा उसके मन में उठती है। धीरोदात तेवर में किया गया यह वर्णन कहानी को वापस जैनेन्द्र की जमीन पर लापटकता है। यहाँ पत्नी का असंतोष भी नदारद है। यथार्थवाद और यथास्थितिवाद में बस सूत भर का फासला होता है, यह कहानी इसे प्रमाणित करती है। 90 के उथल पुथल भरे दशक के पूर्व पीठिका 80 के दशक में ही तैयार हो गई थी। इसकी प्रथम सूचना 1986 में प्रकाशित कहानी तिरिक्ष ने दी थी। समाज और सत्ता के सर्वग्राही चेहरे को बेनकाब करने के कारण यह कहानी वैसे ही ट्रेंड सेटर साबित हुई जैसे 50 साल पहले कफन हुई थी। तिरिक्ष जैसे अंधविश्वासों के सहारे ही राम अवतार जैसे ज्योतिषियों का धंधा चलता है। तिरिक्ष के काटने के बाद किसी के बच जाने पर लोकमन में तिरिक्ष का आतंक कम हो सकता है, इसलिए तिरिक्ष के काटने की झूठी सच्ची शंका के बाद पिता को धतूरे का काढ़ा पिला दिया जाता है जो खुद घातक जहर है। सब अपने गांव वालों के साथ शहर जाते पिता अभी अपनी प्यास के बारे में उन्हें बता भी नहीं पाते कि वे शहर लाकर उन्हें छोड़ देते हैं। शहर में अर्ध विक्षिप्त पिता बैंक से पुलिस थाने तक मारे मारे फिरते हैं और अंततः पाकिस्तानी जासूस करार दिए जाकर संगसार कर दिए जाते हैं। अपने रिहायशी मकान को बचाने के लिए तारीख पर आए पिता मुकदमे के कागजात को भी नहीं बचा पाते और अपने परिवार के सड़क पर आ जाने की आशंका के बीच ही दम तोड़ देते हैं। तिरिक्ष के काटने और धतूरे का काढ़ा पीने के बावजूद शहर आना जरूरी था, क्योंकि तारीख पर न पहुंचने पर वकील लापरवाही करता और जज का मूड अगर खराब हुआ तो वह कुर्की का आदेश दे सकता था। यह है गांव से शहर तक हमारे नागरिक समाज और पुलिस से अदालत तक राज्य सत्ता का वास्तविक चरित्र। बकौल कवि राजेश जोशी, सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना, जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। तिरिक्ष की संवेदना 90 के दशक में परवान चढ़ी और नई सदी के आते आते हिंदी कहानी में वह असाधारण उन्मेष हुआ जिसे हम समकालीन कहानी के नाम से पहचानते हैं। यह सिलसिला अब भी जारी है। कृष्ण मोहन, हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी।